तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे करते बात और भी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल है कि हम थोड़ी सी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह पे करें, क्योंकि जो ही रबी अव्वल का महीना आता है हम रसूल की मोहब्बत में न जाने क्या कुछ कर रहे होते हैं। हर बंदे को जो समझ आती है वो कर रहा होता है, और किसी के पास कोई मेयार नहीं होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो आप देखिए कि जब हम ये कहते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये हमारी गवाही का दूसरा हिस्सा है जिसको हम शहादतैन कह रहे थे ना। तो दूसरी गवाही क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। इसके बारे में क्या है, मोहम्मद क्या थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पहली बात ये है कि रसूल थे, अल्लाह ने भेजा था, इंसान थे इंसान, लेकिन उनके पास वही आती थी। मेरे और आपके पास वही नहीं आती, ठीक है। फिर अगली बात है कि रसूल मासूम होते हैं, रसूलों से गुनाह नहीं होता, खता नहीं होती। यानी मोहम्मद सल्लम की बात करें अगर, नबी सल्लम अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, जैसे हम सारा दिन बोलते रहते हैं कई बातें अपनी मर्जी की करते हैं, कोई ठीक कर रहे होते हैं कोई दूसरों से मुतासिर होकर करते हैं। जैसे अगर यहाँ आपसे राय लीजिए तो हो सकता है कि शुरू में नौशीन जो बात कहें दो लोग बाद में फिर इन्हीं की बात को दोहरा दें कि हाँ इन्होंने ये कहा तो ठीक, हम इम्प्रेस हो जाते हैं ना। रसूल कभी इम्प्रेस नहीं होते थे किसी से। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस आपके सामने आ जाए तो मैं और आप उसको झुटला नहीं सकते, हमें यकीन है कि वो अल्लाह के हुक्म से बोलते थे। फिर रसूल के बारे में क्या कि पूरी इंसानियत की तरफ अल्लाह ने आपको भेजा, रहमतुल आलमीन थे। सूरत अल अराफ आयत 158 में आता है कि कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। पहले तो मैं सोचती हूँ कि हम उम्मत मोहम्मदिया के लोग अगर सजदे में चले जाए ना तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत बनाया कि जिसकी उम्मत बनने के लिए पिछले नबियों ने ख्वाहिश की थी। मुझे और आपको ज़रा बताइए कि अल्लाह के नबी से वाकई इतनी मोहब्बत है कि हम समझ के इस्लाम फिर आपकी मोहब्बत में दीन की तरफ आते, इल्ला माशाल्लाह, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि रसूल जो थे वो लोगों के लिए नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं थे। रसूल का जो असल मुकाम कुरान में आता है ना, सूरह सबा 28 में भी आता है, वो क्या था? वमा अरसलना का इल्ला काफतल नासी बशीरम व नजीरा। हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। रसूल का ये काम था, ग्लैड टाइडर और वार्नर। अच्छे काम करोगे तो ग्लैड टाइडिंग्स, जन्नत, खुशखबरियां, दुनिया में भी आखरत में भी ये सब कुछ मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो जहन्नम मिलेगी। फिर रसूल के बारे में एक और चीज़ भी जहन में रखिए, अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं बचा, बचपन में ही उनके बच्चे फौत होते गए। ये भी नबी के बारे में मामला है। सूरत अल अहज़ाब की आयत 40 में आता है कि लोगों तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल और तमाम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। ये इसमें क्या हिकमत है? अक्सर मैं सोचती हूँ कि आपकी बेटियाँ तो रहीं और बेटियों से नस्ल भी चली, जैसे हज़रत फ़ातिमा से हसन और हुसैन चले और इसी तरह बाकी बेटियों से भी था। तो आप देखिए कि अल्लाह अपनी हिकमतों को खूब जानता है, लेकिन यह है कि अगर जो बात अपेरेंटली समझ आती है कि बाज़ दफ़ा ये जहन में आ जाता है कि बाप के बाद बेटा, राइट, विरासत आ जाती है, खिलाफत आ जाती है। हो सकते हैं अगर नबी सल्लम का बेटा बचता कोई भी तो बाद आपके बाद कई फितने खड़े हो जाते, और अल्लाह ताला इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था कि नसब और हसब ही सब कुछ है। अल्लाह ताला ने नबी की रूहानी औलाद इतनी कसरत से पैदा की कि उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो था वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ के था, ठीक है। फिर इसके बाद रसूल के बारे में एक और बात याद रखिएगा, और वो कह के रसूल को अपनी उम्मत से शदीद मोहब्बत थी। बस लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एग्जैजरेशन में एक तो बहुत ऊपर ले जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि जी अल्लाह को मोहब्बत नहीं है तो रसूल को बड़ी मोहब्बत है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, जुमला सुना होगा आपने कि अल्लाह जिन लोगों को कल पकड़ेगा अल्लाह छुड़ नबी छुड़वाएंगे। और दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी है कि रसूल जो है ये तो बस हमारी जिंदगियों को मुश्किल करने वाले हो गए। नहीं, तो रसूल को अपनी उम्मत से कसरत से प्यार, शिद्दत से। वो हदीसें आपने कसरत से सुनी होंगी कि सारी रात आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको अजाब देगा तेरे बंदे हैं, छोड़ दे तो तू रहम करने वाला है। सूरह मायदा के आखिरी आयते हैं। फिर सूरह निसा एक मौके पे आपने हज़रत अब्दुल्ला मसूद से सुनी तो आपकी आंखें रोती रहीं और आप सारी रात उसी आपकी आंखें नम हो गई कि कल क़यामत के दिन मुझे गवाही देनी होगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आपको बहुत प्यार था। जब हम कहते हैं ना अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें हम एक और गवाही भी देते हैं कि अल्लाह हम अपनी पूरी तौफीक के मुताबिक नबी सल्लम के तरीकों की पैरवी करेंगे। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अब मैं और आप कहते हैं 1,000 दफ़ा कलमा पढ़ लिया, हमारे कल्चर में लोग 1,25,000 का कलमा पढ़ते हैं, मैयत के साथ राहदारी का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये इरादा नहीं है कि नबी के तरीकों पे अमल करेंगे, तो आप बताइए कि शहादतैन का एक हिस्सा तो बिल्कुल ही अधूरा है। ठीक है, फिर नबी की जुबान से जितनी बातें मिली सब के ऊपर ईमान, और एक जो सबसे कड़ी चीज़ है मुझे लगता है नबी सल्लम पर ईमान लाने की शर्त, वो क्या है कि अपनी जान, माल, औलाद, माँ बाप और सारे लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करना, ये शहादतैन का हिस्सा है। अपने दिल पे हाथ लेके पूछिए, क्या हमें नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार है, अपनी औलाद से? आप कहेंगे ये पता कैसे चलता है? हो सकता है कि ना पता हो, मैं कोई बड़ी बात नहीं, तो उसका तरीका समझ लीजिएगा कि एक तरफ अल्लाह के नबी का कोई हुक्म हो और दूसरी तरफ हमारे किसी प्यारे का कोई तकाजा हो। मिसाल दे देती हूँ कि एक तरफ अल्लाह के नबी कहते हैं कि अन निकाह हो मिन सुन्नती, या शादी करो तो मेरे तरीके पे करो, दूसरी तरफ औलाद की खुशी है, रिश्तेदारों की खुशी है, भाई बहनों की खुशी है, बस इन दो मुख्तलिफ चीज़ों में से हम एंड पे किसकी मानते हैं, ये क्राइटेरिया है। इन रिश्तों को एक साइड पे करके नबी की बात मान ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, रसूल से भी मोहब्बत है और अल्लाह से भी, और इसका अपोजिट भी है। तो लिहाजा इसके ऊपर जितना गौर फिक्र करेंगे बेहतर होगा। फिर आप देखिए कि हम कहते हैं मसलतों के नाम पे, चलो खैर है क्या करें, दिस एंड दैट, लेकिन नहीं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अभी तक हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बात कर रहे हैं, हम में से कितनों को अपना ईमान कमज़ोर दिख रहा है, कल बनेगा क्या? देखिए कि कोई बात तो बाद की होती है ना, जैसे कोई मुलाजिम है, आप उसको कोई काम देते, उसने काम क्या किया है, ये तो बाद की बात है, पहले तो ये देखना है ना कि आपको वो क्या समझता है। आपकी मेड है वो आपको मालकन ही नहीं समझ रही, कोई बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉय है तो अपने बॉस को बॉस ही ना समझे, तो जो वो काम भी करेगा उसकी क्या हैसियत है। बहुत ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर इल्म हासिल करें, यकीन करें हम इसके बगैर नहीं जी सकते। अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है कि तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके माँ बाप, उसके बाल बच्चों और सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हज़रत अनस की ये रिवायत है, एक मौके पे हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, अपनी जान से आप ज़्यादा प्यारे नहीं हैं। वो झूठ नहीं बोलते थे ना, हम तो नातों में पता नहीं क्या कुछ करके आ जाते हैं और अमली ज़िंदगी में हम एक नाखून नहीं काट सकते अल्लाह के नबी की सुन्नत पे। तो जब हज़रत उमर ने कहा कि मैं आपसे अपनी जान से ज़्यादा नहीं करता प्यार, यानी मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता, तो अल्लाह के नबी ने उमर के सीने पर हाथ मारा और कहा उमर तेरा ईमान पूरा नहीं हो सकता जब तक कि तू मुझे अपनी जान से भी प्यारा ना रख। तो फिर उमर कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया उस वक्त, फिर मुझे लगा कि नहीं अब तो मैं अल्लाह के नबी के लिए जान भी दे सकता हूँ। और सहाबा की मिसालें पढ़ के देखें, तबूक का सफ़र था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस सफ़र के लिए निकले, जो हालात थे, जैशुल उसरा, तंगी का मौसम, गर्मी, खड़ी फसलें तैयार, और निकलना उस वक़्त ऐसे ही था कि जैसे इंसान के लिए नामुमकिन, लेकिन सहाबा निकले, एक सहाबी थे वो टालते रहे टालते रहे। खैर वक्त आ गया, काफ़िला कूच कर गया, नबी सल्लम और साथी चले गए। शाम हुई, अबू खैसमा इनका नाम था, कहते हैं कि दोपहर का वक्त हुआ, मैं अपने खेतों पे काम कर रहा था, इनकी दो बीवियाँ थीं, दोपहर हुई मेरी बीवियाँ आईं, खाना पका के लाईं, फिर उन्होंने दरख्त के नीचे पानी का छिड़काव किया, मेरे लिए कपड़ा बिछाया। अब क्या उनके भी क्या थे, क्या लाई होंगी, को वो मुर्ग मुसल्लम तो नहीं लाई थी ना, कोई साग या दाल ही लाई थी ना। कहते हैं कि जब मैं वहाँ बैठा, अभी लुकमा तोड़ के मुंह में डालने लगा हूँ, तो मेरी आंखों में अल्लाह के नबी का चेहरा आ गया। मैंने कहा कि तुफ है तुझ पे, अल्लाह का नबी तो अल्लाह के दीन को बचाने के लिए इस वक्त कहाँ धक्के खा रहा है और तू इतनी ऐश में। कहते हैं लुकमा नीचे फेंका और बीवी से कहा मेरा घोड़ा तैयार करो, और घोड़े पे बैठ एड़ लगाई, पहुंच के सबको पता था तबुक की तरफ गए, दूर से मट्टी उड़ती दिखी, तो अल्लाह के नबी ने देखा तो कहा अल्लाह करे ये वो खैसमा हो, क्योंकि आपकी भी नज़रें लगी होती थी अपने साथियों में, आप खुद देखे जो नहीं आता तो इंसान की नज़रें उसकी तरफ लगी होती है ना। यही हुआ, जब अबू खैसमा को देखा तो आपका चेहरा खुशी से खिल गया, क्या मोहब्बत थी उनको, आज मुझे आपको है, हमारी तो कुशन टेढ़ ढीला हो तो हम कहते हैं बैठ नहीं सकते, चलना पड़ जाए तो चल नहीं सकते, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, आप सोचिए अल्लाह के नबी ने इस दीन को पहुंचाने में कितनी मेहनत की, और उनको रिस्पांस क्या मिला? हमें तो जरा सा रिस्पांस कम मिला, हम कहते हैं बस दैट्स इट, लोगों को आना ही नहीं, लोग तो मानते ही नहीं, इनको तो कदर ही नहीं, मैं नहीं इनको अब बताऊंगी। और आप देखिए अल्लाह के नबी के साथ जो हालात हुए, किस तरह से आपके जिस्म को लहूलुहान कर दिया गया। ताइफ का सफर, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में मारा गया, आपके जिस्म से खून बहा। सच बताएं हमारे बहा, हमारा तो पसीना नहीं बहा, खून कहाँ बहना है? अल्लाह के रास्तों में चले तो है नहीं, हम तो नरम और नाजुक गाड़ियों पे बैठ के आते हैं, सॉफ्ट कुशंस पे बैठते हैं, फिर हम नखरे करते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं। इससे भी क्या कोई बड़ी बेहिसी होगी एक मुसलमान की कि वो अपने लिए भी दीन ना सीखे, उसको अपना दीन नहीं चाहिए? इतनी खूबसूरत किताब अल्लाह ने नबी के जरिए दे दी, हमारी नाक पे नहीं बैठती, नखरे बहुत है हमारे, काम ही बहुत है, मसरूफ भी बहुत है, नींद ही बहुत प्यारी है, जॉब भी बड़ी प्यारी है। कभी अकेले में बैठ के बंदा शीशे से बातें करे, क्या तेरी औकात है? आज तेरी आंखें बंद हो, कल क्या जवाब देगी अल्लाह को? नखरे कितने हमारे, मैं तो अपने ऊपर कहती हूँ कि अफसोस है तुझ पे, जितनी अल्लाह की नेमतें हैं तेरे ऊपर और जितनी नबी ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, क्या आज उम्मत की नाक पे जूं भी रिंगती हुई दिखती है? खाने भी पकते हैं, कपड़े भी सिलते हैं, शादियां भी हो रही, मंगनियां भी हो रही, दावतें भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, और अल्लाह के नबी के दीन के हिस्से बखरे हो रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं है। बस ये गम है बच्चा पास हो जाए, तीसरी जमात का बच्चा है ना, तो माँ को गम लगा हुआ कि हाँ ये पास हो जाए, इसके नंबर ना थोड़े आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। इसका सदमा ज्यादा है और इसका सदमा कम है कि इस बच्चे के साथ मरने के बाद क्या होना होता है, ये वहां इसका क्या हाल होगा। कितनी तकलीफें थी अल्लाह के नबी की जिंदगी में, ये चंद बोल सुनिएगा आप भी। सच है कि नहीं? हम अपने घरों को देखें और नबी के हुजरे को देखें, आज भी जब हम उमरे पे जाते हैं तो हम जालियों में से झांक के देखना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी का हुजरा कैसा था, लेकिन आज कभी हमें अल्लाह के नबी के वो घर याद आए, कहाँ वो रहते थे, क्या बसते थे, ताइफ में जो उनके साथ हुआ किसको नहीं पता, सीरत तो पढ़ी होगी ना कि किस तरह आप गए थे कि चलो मक्का वाले नहीं मान रहे, शायद ताइफ वाले मान लें, लेकिन उन्होंने पत्थर मारे। ज़्यादा दौलत वालों में ज़्यादा ही नशा होता है। आप महसूस करके देखें, जितना हम मुसलमानों की ज़िंदगी में तईशात ज़्यादा आ गई, ज़िंदगी अच्छी है ना मरिया, बिजली नहीं गई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, मक्खियाँ नहीं सताती, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। मेरी आदत है कि टेम्परेचर देखती हूँ ना, फ़ोन पे भी अब तो आते हैं, अभी पिछले 2 वीक पहले हम लोग पाकिस्तान में थे तो मैं ये देखती रहती थी कि यहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है या नॉर्वे में कम होता है या लंदन में कम होता है, हर एक जगह का तकाबुल है। हैरत मुझे इस बात की होती थी कि टेम्परेचर नॉर्वे में सबसे कम होता है लेकिन सर्दी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों लगती है? आप देखिए कि वजह क्या है कि उनके घर ठंडे हैं, सारा दिन ईंटें बर्फ की तरह ठंडी होती रहती है, रात को आप जितनी मर्जी हीटिंग कोशिश कर लें लेकिन घर ठंडे। आपके इधर आपको इस वक्त सर्दी लग रही है, और अगर आप देखें तो बाहर हो सकते इस वक्त 7-8 टेम्परेचर होगा, ऐसे ही है ना। कभी हमने सोचा हमें इतनी नेमतें कैसे मिल गई? अगर अल्लाह के नबी जान ना कपाते, अगर अल्लाह के नबी वो कुर्बानियां ना देते, तो क्या आज मुसलमान इस तरह आराम से बैठे होते? अगला मिसरा भी सुने।
मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया। लहू में तर नबी का जिस
बात है कि नहीं। आज कितनी किस्म के गद्दे हैं हमारे, और कितनी किस्म के तकिए हैं हमारे, और ऐसे लगता है कि यही गद्दे और तकिए लेकर पैदा हुए थे। हम सबको पता है हम कहाँ से आए हैं, लेकिन हम बाज़ दफ़ा अपनी जिस्मानी राहत के इतने हरीस हो जाते हैं कि हम इसी को जमा करने में अपनी जिंदगियों को लगाते हैं। कभी आपने सोचा कि पूरी क्यों नहीं बढ़ती? क्यों इतना कमाना पड़ता है? रोटी सालन तो यहाँ भी आसानी से मिल ही जाता है। आप किसी को अमीर कहें, गरीब के खाते सब एक ही जैसा है, एक ही दुकानों से सब खरीदते हैं। फ़र्क किस बात का, हम कर्ज़ों के बोझ में क्यों दबे? आप मार्केट में जाके देखिए तो सही, कितनी किस्म के गद्दे, कितनी किस्म के तकिए। कहीं कुछ अब नाम लूँगी तो और दिल में शौक आएगा कि हम भी जाके देखें बाज़ार में क्या। याद रखिए कि अल्लाह के नबी की उम्मत कोई ऐसी उम्मत नहीं थी जैसी आज हो गई। हम अपने इस जिस्म की हिफाजत के लिए नहीं आए थे, हम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए आए थे। हमारा मस्कन ये दुनिया नहीं थी, हम तो इस दुनिया में वक्त गुजारने आए थे। हमने तो इसी को मंजिल बना लिया। जितना अपने बच्चों को ऐश देंगे उतना उनको बेअमल करेंगे, उतना उनकी ज़िंदगी मकसद से दूर होती जाएगी। आज दीन भी अगर है तो वो भी बस एक स्टाइल का नाम दीन बन गया। दुआ करें कि हमारी सोच खुल जाए। आगे थोड़ा सुने।
जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया। लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है। तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। मुझे जब तीन सोते शक्कर याद आता है। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया।
आज आप देखिए कि हम सोचते हैं कि मुसलमान थोड़े हैं, लेकिन शायद आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इस वक्त दुनिया में मुसलमान या इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिश्चियनिटी के हैं और दूसरे नंबर पे हम हैं। जितने मारूफ मजाहब हैं बाकी वो सब इससे कम है। लेकिन क्या वजह है कि हमारी कोई ताकत नहीं, कोई से नहीं। गज़वे बदर में 313 लोगों से अल्लाह ने वो काम ले लिया जो आज तकरीबन 3 बिलियन मुसलमानों से नहीं ले रहा। वजह क्या है? आपको क्या समझ आती है? इतनी बात सुनने के बाद ज़रा आप भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि हम कहाँ भटके, कमी किधर है। जी इधर से बताइए आप नशीन।
जब हम दीन और कुरान को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, तब से ही मुसलमान भटकना शुरू हो गए।
दीन को छोड़ा, सुन्नतों को छोड़ा। जी आप शासिया।
हमारे अंदर भी ईमान की कमी है, हम कुछ
ईमान
कमजोर हैं।
चला गया, ईमान नहीं है। सच्ची जो बात है, असल कीमत ईमान की है। जैसे आप देखिए कि एक रिंग है ना, असल कीमत रिंग की नहीं, वो किस मटेरियल की है। सोने की है तो कीमती होगी, लोहे की है तो सस्ती होगी। इसी तरह हमारी असल जाहिर फिजीक हालत इससे कुछ नहीं है। असल ये है कि हम बने हुए किस चीज़ के हैं। अगर अल्लाह ताला ने बदर में मैदान में फरिश्ते उतारे तो ईमान की वजह से उतारे। आज ईमान नहीं है। किसी ने जोक भी किया ना कि तुम तो बड़ा कहते हो कि मुसलमानों की मदद करता है अल्लाह, फरिश्ते आते हैं और ये और वो कहानियां हैं, तो ये इतने मुसलमान मरते पिटते हैं तो किधर है अल्लाह के फरिश्ते। तो उन्होंने कहा कि फरिश्ते आए थे, मुसलमान ही नहीं की नजर आए तो चले गए। असल कीमत तो ईमान की वजह से होती है ना। जी आप रोशनी कुछ कहें।
हाँ, मैंने अल्लाह ने अपनी किताब को पीठ पीछे फेंक दिया है और अपनी लाइफ को आगे रख लिया है। फॉर एग्जांपल, हमें फुल टाइम मुस्लिम और पार्ट टाइम पाकिस्तानी होना चाहिए, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को उन्हें फॉलो करना हम ज़्यादा एजाज की बात समझते हैं बजाय के अल्लाह के दीन को फॉलो।
यानी हम फुल टाइम मुस्लिम्स की बजाय पार्ट टाइम मुस्लिम्स हो गए। हम कहते ठीक है, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में जाएंगे, जुम्मे के दिन हम मुस्लिम हैं, सिर्फ निकाह की हद तक हम मुस्लिम हैं, बाकी रस्मों में और चीज़ों में हमें बाकी चीज़ों में हमें कोई ना पूछे। तो क्या पार्ट टाइम मुस्लिम पे अल्लाह की मदद आती है? हम दुनिया में किसी बच्चे को पार्ट टाइम बच्चा बनाना चाहेंगे? कि मम्मी आई एम योर पार्ट टाइम किड, कभी मानूंगा कभी नहीं मानूंगा, कभी सुनेंगे? कोई बीवी अपने शौहर को पार्ट टाइम शौहर रखना पसंद करती है और कोई शौहर पसंद करता है बीवी को? अल्लाह के साथ हमारा मामला क्यों इतना गैर संजीदा है? जी सिस्टर आप कुछ कहिए, जो आपकी फीलिंग्स है अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी।
एक तो ये कि अल्लाह का डर नहीं है हमारे दिलों में, और दूसरी ये कि खौफ, हाँ जी तकवा, और दूसरा ये कि हम अपने इंडिविजुअल मफादात में इतने आगे चले गए हैं कि हमें हमें यूनिटी नहीं रही। हम जनरली नहीं देखते कि अपने मफाद को पीछे छोड़ के दूसरों के साथ मिलके कैसे चलेंगे, मुसलमानों बाकी मुसलमानों को जो हमारी ज़रूरत है हम कैसे उनको हेल्प करें। हम अपने आप मी 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 अपना बहुत ज्यादा।
यानी आपकी बात का जो खुलासा है वो ये है कि हम उम्मत की बजाय भीड़ बन गए। हर बंदे को बस अपनी ज़ात, अपना मुहद, मैं बड़ा बन जाऊँ, मेरा घर, मेरे बच्चे, उनकी जायदाद, उनका जेवर, उनकी शादी। हम पढ़ते हैं खबरें, हमें पता है उम्मत कट रही है, हमें पता है उम्मत पिस रही है, उम्मत के बच्चे पिघल रहे हैं। हम दुख तो रखते हैं लेकिन तड़प नहीं है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक लुकमा तोड़ने से दूसरे के बीच में खबर सुनी, दो चार जुमले भी बोल देते हैं, फिर कहते हैं लाओ मीठा किधर है, आज कुछ नहीं बनाया स्वीट में, मिठाई नहीं जरा ले आना उधर से। हमारा आज हाल ऐसे हो गए कि हम उस दर्द से भी दूर है जो कम अज कम अल्लाह के नबी के दौर में कमजोर ईमान वालों को भी होता था। आप देखिए कि अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेके चला गया लेकिन घर से तो निकला, आज के तो निकलते भी ना। वो तो इसी पे बहस कर रहे थे ये जिहाद है भी कि नहीं, वो तो ये कह रहे होते कि क्या जरूरत है जाने मारने की, हम नहीं जा रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं। ऐसे हमारा जहन इस्लाम से इस वक्त दूर है और हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बातें करते हैं। सिस्टर आप कुछ कहिए।
यही कह रही हूँ कि ज़ाती इज़्ज़त की ख्वाहिशें वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और
ख्वाहिशात में पड़ गए। आपकी बात में बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट कि आज उम्मत मुस्लिमा ख्वाहिश परस्त हो गई है। अल्लाह के नबी ने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि मेरी उम्मत को ख्वाहिशें ऐसे डस लेंगी, को कुत्ता काट ले तो उसके जिस्म के अंदर जहर चला जाता है। तो आज ख्वाहिशों का जहर देखिए, हर चंद साल के बाद सेटिंग्स बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, आज ये नहीं वो नहीं। आप बाजार चले जाए सिर्फ आप हसरत लेके आते हैं, जो चीज़ ले आए हैं वो थोड़ी है, जो छोड़ आए हैं वो ज़्यादा है। ख्वाहिशात, ये कभी नहीं सोचते क्या ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए जाऊँगा, तो देखते हैं क्या सेले लगे हुए ले आते हैं। ये सिर्फ ख्वाहिश के तौर पर, सिर्फ वक्त जो बहुत बड़ी दौलत थी उसको हम किल कर देते हैं। किसी पे 4 पैसे लग जाएं तो उसकी तो हो सकता है कि कदर हो, हमें याद भी रहता है किसी को $10 का गिफ्ट दिया था, लेकिन किसी के ऊपर हमारा वक्त घंटों के अतबार से लग जाए हम कहते इट्स ओके, अब वक्त तो इनको देना ही है। जी आप कुछ कहिए सादिया।
बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक तो अक्ल की बहुत बड़ी बात मुझे फील होती है कि हम मांगते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तो अक्ल नहीं है, सब्र नहीं है,
सबर की कमी है, तवक्कुल की
बहुत
कमी
ज़्यादा
है।
शुक्र नहीं है।
तो आप देखिए कि हम किस तरह नबी के सामने कल क़यामत के दिन जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल आता है, आप देखिए लोगों की धूमधाम, मस्जिदें, जैसे 25 दिसंबर आया, चले दिसंबर से शुरू हो जाती हैं क्रिसमस की बातें, तो रबीउल अव्वल में आके हमने भी वही काम कर लिए, फ़र्क क्या रहा? असल बात तो ये कि अमल किया हमारा। जी आप सिस्टर, आपका नाम?
साबिया,
जी सादिया प्लीज़।
आपने जैसे पूछा कि मुसलमानों में यूनिटी क्यों नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ी उसकी रीज़न ये है कि जो फ़िरका वारियत है बहुत ज़्यादा फ़र्कों में हम लोग बटे हुए हैं, और सब बस ये समझते हैं कि कोई सही है और जो दूसरे हैं वो गलत हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में। तो
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यानी जो इस्लाम है भी उसको भी हिस्सों में बांटा हुआ है, तफरकाबाजी, गिरोह, वो इधर वो सच्चा वो झूठा, और बजाय इसके कि दूसरे सारे मिल के दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, हम आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार होते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सोच बदल दे। ये एक और मिसरा सुन ले, शायद इसमें भी कोई पॉइंट मिल जाए, फिर आगे चलते हैं।
है क्या पाया है क्या खोया, लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है, तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद
आज हम इस बात को सुनते वक्त अपनी गवाही को देखेंगे। बस आज रात को बिस्तर पे लेटे ना तो ये खुद से पूछें कि क्या इरकाने इस्लाम के पहले ही रुकन शहादतैन का हक अदा करती हो, और यकीन करें इसका इलाज इल्म है। मैं आपको गरम गरम बातें करके चली जाऊं, जोश दिला दूं, रुला दूं, हंसा दूं, दुआ मांग लें, बात नहीं बनेगी जब तक ये आपका और मेरा मिशन नहीं बनेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। ये है वो गवाही। आप देखिए जन्नत और जहन्नम का फ़र्क है, पढ़ने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरियाँ और ना पढ़ने वाला जहन्नम में, तो ऐसे ही आप भी पढ़ दो मैं भी पढ़ दूँ, राह चलते लोगों को कलमे पढ़ा दें हम कि मुसलमान हो गए हो, ये तो बात नहीं बनती। इसके लिए इंसान को पूरे शऊर की ज़रूरत है। इसके बाद फिर वो बाकी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ नमाज आती है। नमाज नहीं है तो दीन नहीं है, ये सिर्फ़ एक खेल है। हमने बस एक बात बना ली कि हम मुसलमान हैं, चलो जब हम फारिग हैं तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज वो नहीं है जो हम पढ़ सकते हैं, नमाज वो है जिस वक़्त रब बुलाता है, बल्कि आप कह लें कि रोल कॉल है, दिन में 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही की तस्दीक या तकजीब नमाज के साथ होती है। उसकी बारीकियों पर आप जाके देखिए तो नमाज क्या है, अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक, थैंक यू टू अल्लाह, थैंक यू नोट है अल्लाह को, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, और इस नमाज के बग़ैर इस्लाम है ही नहीं। इस वक्त मैं अब आपकी इसको डिटेल्स में नहीं लेके जा सकती कि कैसी कितनी क्या करें उसकी फिकी बातें, लेकिन पहले नमाज। आज कितने परसेंट मुसलमान 5 नमाजें अपने वक्त पे पढ़ते हैं, सवाल है पूछने का खुद से। अपने वक्त पे तो हम पढ़ ही लेते हैं, रात को जाके 7-5 पढ़ लेते हैं, चलो सुबह पढ़ गए बाकी 2-3 इकट्ठी करके ईशा के साथ पढ़ ली, डजंट मैटर। ये बताइए कि 5 वक्त पे कितनी पढ़नी है, और आप सोचिए कि अगर 50 होती नमाजें तो क्या होता। इब्तदा में तो 50 ही थी ना, सबको मारूफ बात पता। फिर तो वाकई हम मुंह पे ही बोलते हैं कि और क्या करें जी, नमाज ही नहीं खत्म होती। और उससे भी बड़ी अल्लाह की रहमत देखिए कि पढ़ते 5 है अजर 50 का, फिर भी नहीं पढ़ते। कोई आपको कहे ना कि आ जाओ 1 घंटे के लिए, 5 के बजाय 50 पाउंड मिलेंगे, तो कितने भागेंगे उधर कि भाई 1 घंटा काम करके तो हमें 10 घंटे का अजर, और कहाँ 5 करके 500 मिले। तो मेरा नहीं ख्याल के कोई बाहर है। और नमाज के फ़र्ज़ होने पे किसी को शक है? जितने भी फ़िरकों में उम्मत मुस्लिमा बट गई आज, कोई एक फ़िरका ऐसा है एक दो, जो हम तो मुसलमान ही नहीं कहते, वो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं 5 नमाजें नहीं हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कम करके 3 कर ली, किसी ने सिर्फ 2 कर ली, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो इस्लाम की हदों में रहते हुए, वो नहीं कहते कि नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, जो ऑप्शनल है। दलाइल मौजूद है मेरे पास भी, आपको भी BBC मिल जाएंगे कि नमाज़ फ़र्ज़ है, कुरान की आयतें, हदीस नबी की, कि जिसमें नमाज़ फ़र्ज़ है, इसके बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और इस बात पे तो अबू जहल को भी यकीन था, तभी तो कहता था मुसलमान हुआ तो नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। उसमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हम अपनी मर्ज़ी से काम करते। इसलिए इस चीज़ के ऊपर अपने बच्चों को बचपन से आदी करें। देखिए आपको और मुझे क्यों मसला पड़ा हुआ है, इसलिए कि बचपन से आदी नहीं है, कभी पढ़ी कभी नहीं। ये मासूम बच्चे अगर आज आप खुद अपनी जान पे लें, अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं बाप, बस ख़त्म। बच्चों के पैदा होने के बाद अपनी ज़िंदगी नहीं रहती। ये दो मासूम आंखें आपको देख रही हैं, उठें फजर पे, नई दिल कर रहा, मुनाफ़कत से उठें, कुछ भी उठें, लेकिन उठें, ताकि आपके बच्चे देखें कि हमने अपनी माँ को और अपने बाप को बचपन से देखा है कि फजर से पहले उठ के ये घर की लाइटें जला देते थे, हीट बंद कर देते थे। हमारे घरों के माहौल क्या होते हैं आजकल? कसरत से मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि अल्लाह ताला हमारे घर कब्रिस्तान नहीं लगते फजर के वक्त पे। सबसे ज़्यादा गहरी नींद फजर के करीब होती है, और आप किसी भी घर का तसव्वुर करके देखें फजर के वक्त वो कैसा है, ये आपके इस्लाम को जाहिर करेगा कि मुसलमान घराना फजर के वक्त कैसा होता है। वो भी एक वक्त, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त कि जहाँ सुबह के वक्त में ऐसे महसूस होता है कि घर में कुरान की बहारें हैं, क्योंकि वहाँ मुसलमान बसते हैं। चंद दिन पहले हमें किसी जगह एज अ गेस्ट जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत ही अच्छा घराना अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप तो हमेशा ही अच्छे होते हैं अक्सर घरों में, लेकिन बच्चों का अच्छा होना ये बहुत ही कम देखा गया। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाती हूँ। ऐसी फजर की नमाज जब हुई, सब गए, जमात हुई, और उसके बाद सारे बच्चे जो भी थे, और इवन पीछे बैकग्राउंड में आपको माँ की भी आवाज़ें आएंगी कि जो सब अपना अपना कुरान पढ़ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी मदरसे में बैठे हुए। तो मैंने फ़ौरन ऐसे दिल में अल्लाह ताला ने डाला, मैंने उसको फ़ौरन रिकॉर्ड किया, और मैंने उसकी सेविंग भी इस नाम से की कि मुस्लिम होम एट द टाइम ऑफ फजर। अब इसको हम किस सोच से सुने कि हमारे घर से ऐसी आवाज़ें आती हैं फजर पे? अच्छा लग रहा है ना सुनने में? और ये तो छोटा सा, काफ़ी लंबा है, उसमें सबकी आवाज़ें आती हैं, घर के सब लोग बैठ के अपने ऐसी जैसे आप बैठे हैं, हर एक अपना अपना कुरान पढ़ रहा है। कितना प्यारा वो घर लगता है, फरिश्तों को कैसा लगता होगा। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, अल्लाह ताला कहते हैं फजर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है वो अल्लाह को पेश किया जाता है, फरिश्ते उसको लेके खुद लेके जाते हैं कि अल्लाह देख तेरे बंदे पढ़े। और एक सोचिए, हम मुर्दों का घर बना के, मुर्दा खाना बना के सोए हों, उठते भी हैं घर वाले माँ बाप या कोई बड़े तो डरते हुए उठते हैं कि कहीं आंख ना खुल जाए और कोई डांट ही ना दे इस वक्त हमें। ये मुसलमान नहीं होते। कई घरों में ऐसे हैं कि फजर के वक्त में अजान का अलार्म नहीं लगाने देते कि ये क्या हो रहा है, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम कहते हैं हम नबी के मानने वाले हैं। सोचने की बात है, हम कैसी नस्लें छोड़ के जाएंगे, कल क्या करेंगी हमारी नस्लें, तुफ करेंगी। यकीन करें, एक साथी है हमारी नॉर्वे में, तो एक दफ़ा ऐसी पता नहीं क्या लंबी कहानी है, मुझे कुछ उसका आगा पीछा नहीं याद, लेकिन कोई नॉर्वेजियन लड़की उनके घर आई, किसी काम से आई थी, शायद कुछ चेकिंग के लिए आई या क्या, दिस एंड दैट। तो कहती बैठी बातें कर रही थी, تو اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو کہتی جب میں جائے نماز لے کے آئی ادھر تو وہ بچی کہنے لگی کہ آئی سو دس بیفور، یعنی انہیں اسے نارویجین میں کہا ہوگا اپنی زبان کے، کہتی یہ تو میں نے دیکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم نے یہ کہاں دیکھا ہے؟ کہتی یہ میری دادی کے پاس ہوتا تھا. کہا تمہاری دادی؟ کہتے ہاں میری دادی مسلمان تھی. لا حول ولا قوت الا بالله. اگلی نسل دادی مسلمان ہے اور جو پوتی ہے وہ ایتھیسٹ کیسے بن گئی؟ بیچ میں باپ ہی کا ایک اثر رہ گیا نا. تو آپ سوچئے کہ کتنی مسلمانوں کی نسلیں بے دین ہو رہی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا آج اگر ہم نے ان بچوں کو نہ بتایا تو کل یہ نہ یہ کہتے پھریں گے ہاں تھی ہماری امی وہ اٹھاتی تھی نماز پہ، اور ہم تو ان کو تھوڑی بہت کوئی نعرے مار مور کے اٹھا ہی لیتے ہیں، کچھ خون ہے ہمارے اندر گرم، انہوں نے کیسے اٹھانا ہے اپنے بچوں کو جو خود نہیں اٹھتے؟ اور جن گھروں کے نقشے آج ہمارے گھروں میں عموماً فجر پہ دکھتے ہیں یا باقی نمازوں پہ، کیا جوش کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ اپنی نسلوں کو اٹھائیں گے؟ اور جس تیزی سے آپ دیکھیے کہ نان مسلم کلچر میں انٹرمنگل ہیں لوگ، شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی لڑکی مسلمان، کوئی نان مسلم، کوئی کچھ، کوئی دس اینڈ دیٹ، سچ بتائیے کیا وہ اتنے ہی ایمان اور جوش کے ساتھ اپنی نسلوں کو اسلام کی اور نماز کی دعوت دیں گے؟ اس لیے نماز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ تو بیسکس ہیں. ابھی تم صرف ارکان پہ آئے ہیں، ابھی تم نے کوئی میناکاری کی نہیں ٹیبل پہ، ابھی تو صرف اس کی ٹانگیں جوڑ رہے ہیں. ہمارا اسلام اگر اس طرح سے لڑکتا پھڑکتا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم آگے جا کے دوسروں کو کیسے بتائیں گے. بہرحال اس پہ علم کی ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے علم لے لیجیے، لیکن اس وقت یہ نیت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے نبی کے سامنے کل قیامت کے دن رسوا نہیں ہونا. ماننا تو دور کی بات تھی، جاننے تو صحیح، اور جب تک جانتے نہیں ہیں بات سمجھ نہیں آتی. اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان چیزوں پہ لے کے چلے. اگر میں نے اور آپ نے یہ علم اسلام کا اور دین کا علم لینا آپشنل کر لیا تو کل دوسرے کیا کریں گے؟ اس سے بھی نیچے جائیں گے نا. تو یہاں پہ دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان، ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے. یا اللہ ہمارے لیے اس بات کو کرنا، کہنا، سننا، ماننا آسان فرما دے. یا اللہ ہماری اس بہن کی اس کوشش کو قبول فرما، ان کے گھر میں اپنی برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کی تڑپ کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب ساتھیوں کو اس کی قدر افزائی کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں دین کے پودے لگا دے. اور یا اللہ جہاں بھی جو لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، دلوں کی نیک حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. یا اللہ آن لائن پہ بھی جو ساتھی سن رہے ہیں اور جو ساتھی مدد کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص دے. یا اللہ ہمیں ارکان اسلام پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ کل قیامت کے دن کسی صدمے سے دوچار نہ کرنا کہ ہم تو خود کو نبی کے امتی سمجھ رہے تھے، پتہ چلا کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں پانچ چیزوں کی خاص طور پہ حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہمیں خوبصورت مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں نبی کی قدر والا بنا. ہمیں اسلام کی ویلیو کو پہچاننے والا بنا دے. یا اللہ اس اندھیرے کے دور میں ہمیں روشنی کے ایک کرن بنا دے. یا اللہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہدایت اور روشنی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسا دین لینے والا بنا کہ جس کی چمک دمک سے دوسرے بھی منور ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين